स्वर्गाश्रम बट का वृक्ष दो पैर 23-5-41 72 वर्ष हो गया, 72 वर्ष पुराना लेख। नित्य व्यवहार की कल्याणकारी बातें हैं। कोई स्त्री अपने सास आदि को गाली देती है तो समझना चाहिए भयंकर पाप लगेगा। और कोई कोई तो हाथापाई कर लेती है, ऐसी स्त्री का यदि कोई दर्शन कर ले तो पाप लगता है। प्रश्न करते हैं कि यदि कोई गलती हो गई तो क्या करें? भगवान का भजन करो, भगवान के भजन से ही पाप नष्ट होंगे। और भगवान का भजन करते करते निश्चय करें कि आगे ऐसा पाप नहीं करेंगे, आगे बिल्कुल पाप नहीं करेंगे। ये भाव जितना काम करता है उतना दूसरा कोई काम नहीं करता। कोई ये सोचता हो कि भगवान का भजन कर लेंगे अभी पाप कर लो, भगवान का भजन तो पाप नष्ट कर ही देता है, इस मुगालता में न रहे, बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। दूसरे लोग हमको भजन करने वाला मानते हैं, हमको अच्छा मानते हैं, उनकी दृष्टि में हम भजन करते हैं तो हमारे द्वारा यदि भजन की ओट में पाप होगा तो भजन ने पाप को बढ़ा दिया, कितना नुकसान हुआ है। इससे लोगों में बड़ी भारी हानि होगी। भजन के ओट में किया गया पाप वज्रलेप हो जाता है। याद रखना चाहिए कि पति है, श्वास है, सास है, ससुर है, ये केवल पूजने लायक होते हैं। इनसे बराबरी की बातें करना, तू तू मैं करना, इनके सामने कठोर वचन बोलना, इनके सामने क्रोध पूर्वक देखना, इससे बड़ा अनर्थ होता है। आजकल की स्त्रियां समझती नहीं है, अरे तुम्हारे लिए कितने आनंद की बात है, पति सास ससुर की पूजा करो, आपका कल्याण पड़ा है। सावित्री ने तो अंधे सास ससुर की सेवा की और यमराज से उनके लिए वरदान मांग लिया, उनको दृष्टि मिल गई, राज्य मिल गया। आजकल की स्त्री को यदि ऐसा यमराज वरदान मांगने के लिए कहे तो वो तो यही वरदान मांगेगी कि मेरे सास ससुर कितने जल्दी मरे। सावित्री ने कितना अच्छा काम किया, तभी तो आज हम कितने वर्षों के, हजारों वर्षों के बाद भी उनकी कथा कहते हैं। कोई हमको सुखी आदमी मिल जाए, अपने सुख का बखान करे तो प्रसन्न हो जाओ, दूसरे के सुख में सुखी हो जाने पर आप अपना सुख भूल जाओगे। इतनी सी तो बात है, पर आजकल लोग दूसरे के सुख में जलते रहते हैं, नाहक वे लोग परलोक बिगाड़ते हैं। वैसे सुख का भाव अपने अंदर से मिटता नहीं है, परंतु सुखी आदमी को देखकर सुखी हो जाओ तो आपके सुख लेने का भाव मिट जाएगा। ये रहस्यमय विद्या है। ऐसे ही दुखी आदमी को देखकर रोने लग जाओ, दया करो, आपका दुख रफू हो जाएगा। कोई बहुत अच्छे महात्मा मिले तो भगवान मिलने के समान प्रसन्न होना चाहिए। भगवान मिले तो ज्यादा देर हम बात नहीं कर सकते, ज्यादा देर देख नहीं सकते, ज्यादा देर मिल नहीं सकते। महात्मा मिल जाए तो भगवान से ज्यादा उपदेश मिलता है, भगवान से ज्यादा हमको दर्शन मिलते हैं, भगवान से भी ज्यादा बात करने का मौका मिलता है। इसलिए महात्मा मिले तो भगवान से भी ज्यादा खुश होना चाहिए। पापी मिल जाए तो उसकी उपेक्षा करो, ना उसके साथ द्वेष करो, मुंह लगाने का प्रश्न ही नहीं, उपेक्षा करो। बड़ों की सेवा न करके जो बड़ों को दुख देने वाला है, बड़ों को अनशन बोलने वाला है, ऐसे आदमी से पहले से ही दूर रहो। जो आदमी गाली देता है, दूसरे को कष्ट देने वाली बात बोलता है, जैसे तेरा सत्यानाश हो जाए, जैसे तू डूब मर, ऐसे ऐसे गाली देता है, उसका तपस्या का स्वरूप नष्ट हो जाता है। हम तो कहते हैं गाली कुत्ते को भी नहीं देना चाहिए। अपने शब्दों में अमृत भी है और जहर भी है, तो आप जहर क्यों पियो और जहर क्यों देओ? अमृत पियो और अमृत देओ, उल्टे रास्ते क्यों चलते हो? जाने क्या आजकल लोगों में भाव हो गया, उल्टा रास्ता जल्दी पकड़ते हैं। सही रास्ते में आराम ही आराम है, उधर देखते ही नहीं। कुत्ते को भी गाली न दो, उसका भी दिल न दुखाओ। जो अपना अनिष्ट करे उसका उपकार करो, जो हमको गाली दे उसको आशीर्वाद दो। ये बहुत बड़ी तपस्या है और आपका सुधार है। जो चीज अपने लिए बुरी होती है वो दूसरे को नहीं देनी चाहिए। खाने की जो बुरी चीज है वो नौकर को भी नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार गाली को हम अपने लिए बुरी समझते हैं, दूसरों को क्यों दें? वाणी पर कंट्रोल करो। कोई हमको गाली दे तो आप कुछ मत बोलो, उसकी बात का जवाब मत दो। अपना कर्तव्य है कि दूसरे को सुख पहुंचाओ। गाली देने में किसी को सुख तो होता नहीं। अगला आदमी यदि गाली देकर सुखी होता है तो मन ही मन में प्रसन्न हो जाओ कि वाह, हमारे द्वारा बिना कुछ किए इसको सुख मिल गया। मनु में मनुस्मृति में आया है कि मान बड़ाई को विष के समान समझकर त्यागना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, मान बड़ाई को विष के समान समझकर त्याग करना चाहिए। अपना यदि खूब मान हो तो जैसे मृत्यु से डर लगता है इतना डरना चाहिए। अपनी यदि बड़ाई हो तो जैसे आग की लपेट में बैठे हो इतना कष्ट होना चाहिए कि मैं आग में बैठ गया, हाय रे आग लग गई। कोई अपमान करता है तो अमृत के समान समझकर उसको सेवन करना चाहिए। कभी कभी डॉक्टर वैद कड़वी दवा देते हैं, मुंह में रखते ही मुंह का स्वाद एकदम खराब खारा हो जाता है, परंतु लेने के बाद उसको रोग मुक्ति मिलती है, रोग से मुक्ति मिलती है, तो वो कड़वापन उसको बाद में बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार अपमान को एक दवा समझ करके पी लो। पहले पहले आपको बुरा लगेगा, फिर आपको बहुत अच्छा लगना लगेगा। और जिसमें अपने से बड़े डांटते हो, स्त्री को यदि सास डांटती हो तो उसको तो अपमान समझना ही नहीं चाहिए, उसमें सासू का प्रेम देखना चाहिए। यही साधना है। अच्छे पुरुष होते हैं वो मान बड़ाई का त्याग करने के लिए दूसरे को मान देते हैं, दूसरे को मान देने से अपने अंदर मान लेने की इच्छा खत्म हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज ने भगवान के लक्षणों में कितनी अच्छी बात कही है, सभी मान प्रद आप अमानी। मान यदि बुरा है तो दूसरे को क्यों दे कि नहीं, मान अपने लिए बुरी है, दूसरे के लिए, दूसरे को देने के लिए बुरा नहीं है। कितनी बढ़िया बात, शास्त्रों में नहीं आती ऐसी बात सीधी सीधी। मान यदि बुरा है, मान यदि जहर है, तो दूसरे को क्यों दे कि दूसरे के देने में जहर नहीं है, लेने में जहर है। एकादशी का महत्व खुद एकादशी करके सीख लेना चाहिए। खुद तो एकादशी करे नहीं, लोगों को कहे एकादशी करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई सोचे कि एकादशी के व्रत है, आज एकादशी के दिन दूसरे को अन्न बांट दो तो हमको एकादशी का महत्व मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मान न लेकर उसका महत्व सिखलाना चाहिए। प्रत्यक्ष में किसी का नुकसान होता हो वो चीज देना नहीं चाहिए। स्त्रियों के लिए सबसे बढ़कर संसार में पति होता है, लेकिन पुरुषों को चाहिए कि स्त्रियों का निरादर न करें। बहुत से पुरुष स्त्री पर हाथ उठाते हैं, ये पाप है, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। स्त्री जीवन संगिनी होती है, उसके साथ मित्रता का बर्ताव करो, जैसे मित्र के सामने हम बर्ताव करते ऐसा व्यवहार करो। पति का कर्तव्य है उसका आदर करो, सत्कार करो। और एक बात और बताते हैं, आप घर में कोई धार्मिक काम करो तो सबसे पहले अपनी स्त्री से सलाह लेकर करो। यदि स्त्री अपने धर्म का पालन नहीं करती हो तो पति को तो अपने धर्म का पालन करना चाहिए, परंतु ऐसी स्त्रियां कम ही होती हैं जो धर्म के पालन में स्त्री का व पति का साथ नहीं देती हो। हाँ, ऐसा तो देखने में आता है, पति अपने धर्म का पालन नहीं करे और वो स्त्री को भी मना करे, तो ऐसी स्थिति में स्त्री को जो अपना धर्म है उसका पालन करना चाहिए। अब दोनों में से यदि कोई किसी को शिक्षा देनी हो तो जबान से कहने के बजाय धर्म का पालन करना चाहिए, जिससे एक दूसरा देख लेवे तो वो भी वैसा करे। स्वयं पालन नहीं करे और उपदेश देवे ये अच्छी बात नहीं है, उसको उपदेश देने का अधिकार ही नहीं है और ना उसके वचनों का असर होगा, उल्टे घर में कलह पैदा होगी। स्त्री को ऐसे धर्म का पालन करना चाहिए कि उसके सगे संबंधी, दूसरे लोग, पास पड़ोस के लोग भी धर्म की भावना में जागृत हो जाए। यद्यदा चरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन है। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है दूसरे पुरुष भी उसी के अनुसार करते हैं, जो प्रमाण वो कर देता है लोग भी उसी प्रमाण के अनुसार चला करते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि यदि मैं धर्म का पालन नहीं करूं तो ये कर्तव्य की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी। इसलिए पुरुष यदि धर्म का पालन न करे तो स्त्री पति को उपदेश न दे, स्त्री यदि धर्म का पालन न करे तो स्त्री को पति उपदेश न दे। ऐसा उपदेश देना तो केवल दिखावा है, अच्छा भी नहीं है। और यदि कोई बात किसी को कहना हो तो दूसरे से ही कहलवाना चाहिए। जब पति से यदि कुछ कहलवाना हो, पति को कुछ कहलवाना हो तो पुत्र को कह दो, सास को कह दो, परिवार में जो निकट के हैं उसको कह दो, सीधा नहीं कहना चाहिए। ऐसे ही पत्नी को कुछ कहना हो तो अपने बेटे को कह दो कि तुम्हारी माँ को तुम ये बात बोल दो, उपदेश सीधा नहीं देना चाहिए। आजकल लोग व्याख्यान बहुत देते हैं, असर नहीं पड़ता है। कारण क्या है कि वे उसका पालन नहीं करते। व्याख्यान दाता में ये बातें होनी चाहिए। पहला, एक तो स्वयं पालन करे, दूसरा व्याख्यान देता, व्याख्यान दाता सत्यवादी होना चाहिए। सत्य का बड़ा असर होता है। व्याख्यान देने में तो पापी भी खूब अच्छा व्याख्यान दे सकता है, परंतु उसके जीवन में वो आचरण नहीं है तो वो व्याख्यान कोई काम का नहीं। तीसरा, व्याख्यान दाता में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि व्याख्यान दाता के मन में कुछ भी स्वार्थ होगा तो वो सच्ची बात कह ही नहीं सकता। उसको अपने स्वार्थ की हानि में भय लगेगा, इसलिए स्वार्थ रहित होकर कहना चाहिए, निष्काम भाव से कहना चाहिए। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा का भाव न रख करके व्याख्यान देना चाहिए। यदि व्याख्यान दाता ज्ञानी हो, महात्मा हो, तब तो कहना ही क्या है, उसके दर्शन से ही उद्धार हो जाता है, उसके आचरण से ही असर हो जाता है। साधारण आदमी को व्याख्यान देना पड़े उसको इसीलिए व्याख्यान देना चाहिए, ये भाव रख करके व्याख्यान देना चाहिए कि ये व्याख्यान मैं मेरे लिए दे रहा हूं, इस व्याख्यान से मुझे मेरा सुधार करना है। फिर उसके व्याख्यान से यदि उसका सुधार होता है तो ये व्याख्यान देना उसके लिए साधन भजन हो जाता है। यदि मैं आपको उपदेश दूं कि देशी वस्त्र पहनो तो आपकी दृष्टि मेरे पर जाएगी, कि देखो ये उपदेश तो देता है पर ये स्वयं देशी वस्त्र पहनता है कि नहीं। यदि मैं देशी वस्त्र नहीं पहनता हूं और आपको उपदेश देता हूं तो आप लोग हंसोगे, सामने नहीं हंसोगे तो पीठ पीछे हंसोगे, मेरी बात का मजाक उड़ाओगे। मेरे कहने का ये भाव है कि खुद अपने आप को तैयार करो, अपने आप को योग्य बनाओ, अपने द्वारा दूसरों को दुख मत पहुंचाओ। गाली देने से दुख होता है, दुख देने के समान पाप नहीं है और दूसरे के हित करने के समान कोई पुण्य नहीं है। परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर हित बस जिनके मन माही, तिनके जग दुर्लभ कछु नाही। भगवान तो कहते हैं उन्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी, ते प्राप्नु वांति वामेव सर्वभूति ते रहता है। किसी का हित न करके सुख पहुंचाओ। यदि नया सुख नहीं दे सकते हो तो कम से कम दुख तो बिल्कुल ही मत दो। स्वार्थ का त्याग कर दूसरों का हित करता है वो सीधा भगवान के धाम में जाता है। आपको जो कुछ भी मिले उसमें संतोष रहने का भी स्वभाव बनाओ। संतुष्ट है सततम योगी। यदि आपके सामने बहुत बड़ी संकट की स्थिति आ गई हो, भयंकर बीमारी लग गई हो, भयंकर घाटा लग गया हो, या कोई प्रिय से प्रिय व्यक्ति संसार से चला गया हो, ऐसा यदि संकट भी आ गया हो तो इसको ईश्वर का प्रसाद समझ करके स्वीकार करना चाहिए। सार बात है अपने से बने, दूसरे का हित करो और हरदम भगवान का भजन करते रहो। भजन करने से स्वतः ही अपने अंदर शांति उमड़ेगी। नारायण नारायण नारायण।